जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotra Satam. His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai. Shri Shri Gaurnitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Shrimati Radha Rani ki jai, Shri Radhashtami Mahotsava ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Nitai Gaur Premanande, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Guru Gauranga ki jai. हरे कृष्णा. आज राधाष्टमी है. श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस. वृंदावन में जन्माष्टमी से भी महत्वपूर्ण राधाष्टमी मानी जाती है. जितने धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है उससे भी अधिक धूमधाम से राधाष्टमी मनाई जाती है. आखिर श्रीमती राधारानी का ही तो स्थान है वृंदावन. श्रीमती राधारानी है वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी. इसलिए वृंदावन में जगह जगह हम देखते हैं राधे राधे. हम कृष्ण का नाम इतना नहीं देखते हैं वृंदावन में, जितना कि श्रीमती राधा रानी का नाम देखते हैं। पेड़ों पे आप देखेंगे, दीवारों पे देखेंगे, जगह जगह देखेंगे राधे राधे। और जब लोग एक दूसरे को पुकारते हैं, हम लोग जैसे हरि बोल कहते हैं, ए हरि बोल इधर आओ बुलाते हैं, तो पति पत्नी भी आपस में हरि बोल कहते हैं, हरि बोल देखो उधर है जैसे। तो वृंदावन में राधे राधे कहते हैं, राधे राधे इधर। रिक्शा वाले भी कहेगा राधे राधे। इसलिए वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का महत्व अधिक है। वैसे अनेक स्तुतियां स्तोत्र आदि गाए जाते हैं वृंदावन में, और ये सब बहुत ही मधुर हैं। इनमें से कई महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और उन महत्वपूर्ण और लोकप्रिय स्तोत्रों में से ये एक है, जिसको श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज कहते हैं। राधा रानी के कृपा कटाक्ष की याचना इसमें किया हो, इसमें की गई है। कटाक्ष अर्थात श्रीमती राधा रानी की दृष्टि सीधी नहीं, भले हम वहां खड़े हों पर कोने से अपने आंखों से एक दृष्टि हमारे ऊपर लग जाए, बस उतना हमारे लिए बहुत है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सबसे बड़ा भेंट या उपहार हमारे लिए होगा। तो ये है श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष। अक्ष मतलब आंखें, दृष्टि। स्तवराज अर्थात जितने भी स्तव हैं, स्तोत्र हैं, उनका ये राजा है। वृंदावन में इतना लोकप्रिय है कि अक्सर लोग हैं जो ब्रजवासी हैं, वो कंठस्थ उनको है ये भजन। मंदिरों में अक्सर गाया करते हैं भक्त लोग जाके। और ऐसे भी कहा जाता है कि फलश्रुति में आता है, इसी ही स्तव के फलश्रुति में, कि जो राधा कुंड में खड़े होकर भले अपने जंघों तक, अपने नाभि तक, अपने वक्षस्थल तक, अपने गर्दन तक खड़े होकर ये श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज 100 बार बोलता है, तो उसको श्रीमती राधा रानी का दर्शन हो जाएगा। श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, उसे कृष्ण लीला में प्रवेश देंगे, वाक सिद्धि भी मिल जाती है, जो बोलेंगे वो सत्य निकलेगा। तो ऐसे भी एक फल श्रुति है। जैसे आपको पता है कि हर एक स्तव आदि या कथा के पीछे एक फल श्रुति होती है, इसका मतलब है कि उस कथा का श्रवण करके या पठन करके या उस स्तव को गा के जो फल मिलेगा या उसको सुन के जो फल मिलेगा, उसको फल श्रुति कहते हैं। तो ये राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज ये वास्तव में गाया है शिवजी ने। शिवजी पार्वती देवी को ये कहते हैं। श्री ऊर्ध्वामनाय तंत्र नाम के ग्रंथ में ऊर्ध्वामनाय तंत्र ये भी एक तंत्र शास्त्र है, इसमें शिवजी ये कहते हैं। तो आइए इसको हम अभी गाते हैं। आप सब देख पा रहे हैं मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंगमंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवान् सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनैः निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंप कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीभिति नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंबलंबमान पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका वरोह सौरभा सब गुरु के कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वनाति कौरवे विधौल हेम वल्लरे विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चित हिमाद्रिजा पुलोम जा विरंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते मद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम् भवेत्तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम् राकायाम च सिताष्टम याम दशम याम च विशुद्ध धी एकादश्याम त्रयोदश्याम यह पठे साधक सुधीः यम यम कामयते कामम् तम तमाप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा ऊरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृद्दघ्ने कंठदघ्नके राधा कुंड जले स्थिताय पठे साधक शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धिः स्याद् वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकां तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यति नेत्राभ्याम् तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्रार्थ्यम् वैष्णवस्य न विद्यते इति श्रीमदुर्ध्वाम्नाये श्रीराधिकाया कृपाकटाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम्। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि भानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि ह मा कृपा कटाक्ष भजनम् करिष्यसि ह मा कृपा कटाक्ष भजनम् कदा करिष्यसि ह मा कृपा कटाक्ष भजनम्
चित्र है राधा रानी का इधर और दृष्टि कैसी है सीधी है नहीं इसको कहते हैं कटाक्ष तो श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज ये बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्रार्थना है ब्रज में और आज तो सब जगह वृंदावन में अवश्य राधे राधे के अलावा ये भी स्तोत्र गा रहे होंगे वृंदावन में तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम
तो इस एक आधे पंक्ति, एक चौथाई पंक्ति को तो हम याद कर सकते हैं। तो हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो आज के दिन ये राधा रानी के चरणों में ये प्रार्थना करते जाएंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? शशि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, करिष्यसि हमाम कृपा भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्रीमती राधा रानी की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य तो है, परंतु ऐसे नहीं है कि परम सत्य अकेले हैं। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ सदैव उनके भक्त रहते हैं, जिनके साथ श्री कृष्ण दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं हर क्षण। और ये प्रेम रस की वृद्धि प्रतिक्षण होते रहती है। ये आध्यात्मिक जगत के कार्य हैं। और इस प्रेम के आदान प्रदान के कार्यों को हम लीला कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला ये क्या है? श्री कृष्ण स्वेच्छा से जब कोई कार्य करते हैं वो प्रेम से उद्भूत होता है। यहां इस भौतिक सृष्टि में देखा जाता है कि कार्य करने के अनेक कारण होते हैं, प्रेरणाएं होती हैं। कभी कभी हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं लोभ से, कभी क्रोध से, कभी ईर्ष्या से, कभी करुणा से, कभी प्रेम से। तो ऐसे भिन्न भिन्न कारण रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं तरह तरह के कार्यों को संपन्न करने के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण किस प्रेरणा स्रोत से उत्तेजित होकर कार्य करते हैं? वो है प्रेम।
और इसी 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 के लिए इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, उन्होंने अपने आप को विस्तार किया है और अपने जो विस्तारित अंश हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान के धाम में ऐसी लीलाएं नित्य रूप से चलती हैं। भगवान कृष्ण के साथ में जो भक्त रहते हैं उनके भी कई वर्ग हैं, कई श्रेणियां हैं और पांच रसों में भगवान श्री कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इन पांच रसों को हम यहां भी इस भौतिक जगत में देखते हैं। शांत रस है जिसमें हम किसी की महानता को समझते हैं परंतु उनके साथ कोई विशेष रूप से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हुआ होता है, परंतु थोड़े दूर से ही उनकी महानता का, उनके गुणों का आदि एक अनुभव होता है या एक जानकारी होती है। इससे ऊपर है दास्य भाव जिसमें एक दास प्रभु की या मालिक की सेवा करता है। इसके ऊपर है सख्य भाव जिसमें दो मित्र आपस में एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव करते हैं। वहीं बैठ जाइए। और इसमें मित्रता में एक समानता की भावना होती है, दास और प्रभु के संबंध में समानता नहीं होती। प्रभु श्रेष्ठ हैं और दास निम्न श्रेणी पर है, परंतु सख्य भाव में समानता होती है। और इससे भी ऊपर वात्सल्य भाव है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ संबंध रखते हैं। इसमें माता पिता का स्थान बच्चों से श्रेष्ठ होता है। और अंत में पति पत्नी या प्रेमियों का संबंध होता है जो इस दुनिया में भी देखा जाता है। तो ये पांचों संबंध यहां क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो भगवान के धाम में होते हैं अपने मूल रूप में। बल्कि यहां जो ये संबंध देखे जाते हैं वो भगवत धाम के संबंधों के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। अपने मूल रूप में शुद्ध अवस्था में ये सारे संबंध भगवान के धाम में पाए जाते हैं और वहां वो भगवान के ऊपर केंद्रित होते हैं। तो ये शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, श्रृंगार रस, ये सब वहां पाए जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि इन पांचों रसों में से सबसे श्रेष्ठ है माधुर्य रस या श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसे मधुर रस भी कहा जाता है, ये माधुर्य रस, क्योंकि इस रस में जो माधुर्य है, जो निकटता है, वो सबसे अधिक है। अन्य जो संबंध होते हैं उनमें निकटता तो होती है परंतु उतनी नहीं होती है जितने की माधुरी रस में होती है। वहां भगवान श्री कृष्ण के धाम में, वैकुंठ जगत में, दो प्रकार के माधुरी होते हैं जो यहां भी पाए जाते हैं विकृत रूप में। एक है विवाह के भीतर और दूसरा है विवाह के बाहर। अब जो विवाह के बाहर है वो तो अनैतिक है हमारे भौतिक जगत में और वो करना तो अच्छा नहीं है, पाप कहलाता है। और विवाह के भीतर जो संबंध है वो नैतिक माना जाता है। लेकिन फिर भी संसार का सत्य है कि ऐसे दोनों प्रकार के संबंध होते हैं, भले एक को नैतिक माना जाए दूसरे को अनैतिक माना जाए, लेकिन होते हैं, सत्य है और अनादि काल से चलते आ रहा है, दुनिया का नियम है। तो नैतिकता और अनैतिकता की बात ये यहां भौतिक सृष्टि में हम सबके लिए आती है, हम मनुष्यों के लिए, और ये आवश्यक है। मनुष्य समाज में नीति नहीं होगी तो मनुष्य समाज टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पशु समाज बन जाएगा। तो हमारे लिए नीति या नैतिकता का पालन करना अति आवश्यक है। परंतु ये नीति का जो विचार है, क्या ये भगवान के ऊपर लागू होता है? भगवान तो नीति बनाने वाले हैं। जो हमारे लिए सर्वसाधारण नियम होते हैं और जो प्रथाएं होती हैं, वो क्या भगवान के ऊपर लागू होते हैं? नहीं होते। वैसे श्रीमती राधा रानी के साथ जो श्री कृष्ण का संबंध है और अन्य गोपियों के साथ भी श्री कृष्ण का जो संबंध है, वो तथा कथित विवाह के बाहर है। इसको परकीय रस कहते हैं। तो मधुर रस के दो विभाजन हैं, स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय वो होता है जो विवाह के भीतर होता है, जैसे कि द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने पटरानियों के साथ में संबंध रखे थे, और विवाह के बाहर परकीय रस के संबंध जो होते हैं वो जैसे वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रखे थे। अब ये एक निंदा का विषय होता है उन लोगों के लिए जिनको कि कृष्ण तत्व या कृष्ण लीला का ज्ञान नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि ये कैसे भगवान हैं जो स्वयं अनैतिक कार्य करते हैं, विवाह के बाहर अन्य महिलाओं के साथ में संबंध रखते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण की निंदा अनेक लोग करते हैं। परंतु सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के बाहर, श्री कृष्ण से स्वतंत्र कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये सब श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं, या तो उनके निजी विस्तार हैं, या उनके शक्तियां हैं, या उनके शक्तियों के विस्तार हैं। सब श्री कृष्ण की संपत्ति है, इसलिए जब श्री कृष्ण उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तो इसमें कोई आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए कोई दोष नहीं है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब ना, जब आध्यात्मिक दृष्टि ना हो और केवल भौतिक दृष्टि से हम देखें और हमारे संसार के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संसारी नीति की आवश्यकता का आरोप भगवान के ऊपर लगाएं, तब ये सारी समस्याएं आती हैं। भगवान के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भगवान के लीलाओं में उनको कोई संगी चाहिए, कोई भक्त चाहिए जो साथ में उनकी लीला कर सके। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, अर्थात अपने आप में संतुष्ट है, आत्मतुष्टि ये लक्षण है भगवान का, फिर भी अपने दिव्य आनंद की वृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को और अपनी शक्तियों को विस्तारित करते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। एको बहुश्याम, इसलिए एक भगवान अनेक हो गए, अनेक रूपों में विस्तृत हो गए। तो ऐसे माधुर्य रस में जो सबसे श्रेष्ठ रस माना जाता है, निकटता और मिठास आदि के दृष्टि से, उनमें से भी ये दो विभाजनों में से ये परकीय रस और भी श्रेष्ठ माना जाता है, स्वकीय से भी श्रेष्ठ माना जाता है, और ये केवल वृंदावन में पाया जाता है। जबकि यह स्वकीय रस और परकीय रस में भेद किया गया है कि परकीय रस श्रेष्ठ है, तो परकीय रस में जो भक्त हैं भगवान के वो है केवल गोपियां। और गोपियों में से ऐसे लाखों लाखों गोपियां हैं वृंदावन में, उनमें से 16,000 सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन 16,000 गोपियों में से 108 गोपियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन 108 गोपियों में से 8 गोपियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन 8 गोपियों में से 2 गोपियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, वो हैं चंद्रावली और राधा रानी। और इन 2 गोपियों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो इस तरह से देखा जाए तो समस्त आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में पांचों रसों में से सर्वश्रेष्ठ माधुर्य है, माधुर्य रस में से सर्वश्रेष्ठ परकीय है, परकीय में से सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी। तो यह है श्रीमती राधा रानी का स्थान। श्री कृष्ण के नित्य संगी हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे समय था जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ नहीं थी, न ऐसे भविष्य में होगा। नित्य रूप से श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का संबंध है। और किस तरह का संबंध है? ये संबंध है शक्तिमान और शक्ति का। श्रीमती राधा रानी शक्ति है श्री कृष्ण की, इसलिए शक्ति और शक्तिमान तो हमेशा साथ में रहेंगे। क्या आप सूर्य और सूर्य की किरणों को अलग कर सकते हैं? क्या आप अग्नि और अग्नि के प्रकाश को अलग कर सकते हैं? संभव नहीं है। ठीक उसी तरह है, श्री कृष्ण को आप श्रीमती राधा रानी से अलग नहीं कर सकते हैं। हम सब तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भौतिक माया शक्ति के कारण यह संसार चल रहा है और सारे बद्ध जीव भगवान के माया शक्ति के अधीन है। इस माया शक्ति को बहिरंगा शक्ति कहते हैं या अपराशक्ति, भगवद गीता में ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अष्टधाश प्रकृति जो है ये 8 तत्वों से बनी हुई, भूमि आप इत्यादि, इसे बहिरंगा शक्ति या अपराशक्ति कहते हैं। ये निम्न श्रेणी की शक्ति है भगवान की, जो केवल इस भौतिक सृष्टि में कार्य करती है, परंतु इस बहिरंगा शक्ति का प्रभाव भगवान के धाम में बिल्कुल नहीं है। तो भगवान के धाम में उनकी आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है, जिसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व या उनकी चित्त शक्ति कहते हैं। वैसे उनकी आध्यात्मिक शक्ति का ही विस्तार है ये भौतिक शक्ति। तो वहां भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। एक है संवित, दूसरा है संधिनी और तीसरा है लादिनी। उनकी अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति के ये 3 विभाजन है, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। संधिनी शक्ति भगवान की वो शक्ति है जिसके द्वारा श्री कृष्ण अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। संवित शक्ति वो है भगवान की जिसके द्वारा वो अपने आप को जान सकते हैं और जिसके द्वारा हम सब भी कृष्ण को जान सकते हैं। और लादिनी शक्ति वो है जिसके द्वारा श्री कृष्ण को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और जिसके द्वारा श्री कृष्ण अपने भक्तों को पोषित अवस्था में रखते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। भक्तों को पोषण चाहिए, भक्ति का पोषण, तो वो भक्ति का पोषण प्राप्त होता है इस लादिनी शक्ति के द्वारा। इसके बारे में और आगे थोड़ी चर्चा हम करेंगे चैतन्य चरितामृत से। तो ये लादिनी शक्ति के स्वरूप हैं श्रीमती राधा रानी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का स्थान क्या है। वैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पहचान कराते समय बताया है राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौतौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। इसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की पहचान कराते कराते राधा कृष्ण की पहचान भी कराते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण को न समझकर हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाएंगे और चैतन्य महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। तो राधा कृष्ण प्रणय प्रणय अर्थात प्रेम, तो राधा कृष्ण की जो प्रेम की लीलाएं हैं वो लादिनी शक्ति जिसका उल्लेख हम अभी अभी कर रहे थे उसका स्वरूप है, उसका विकार है। उनमें जब परिवर्तन होता है उसके जब कार्य होते हैं उनको भगवान की लीला कहते हैं प्रेम के। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्माद, तो श्रीमती राधा रानी है ये लादिनी शक्ति। एक आत्मनौ, तो वैसे राधा और कृष्ण एक हैं, जैसे कि शक्ति और शक्तिमान एक हैं। एकात्मानव अपि, हालांकि वो एक हैं, फिर भी भुवि वो इस भुवलोक पर या यहां पर वो प्रकट हुए हैं, वो दोनों वो अलग हो गए। एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतौ, फिर भी एक होने के बाद भी वो अलग हो गए, देह भेद होकर दो रूप हो गए, और वो दो रूप है राधा और कृष्ण। अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो दोनों फिर से एक हो गए। चैतन्याख्यम अधनम अधुन प्रकट, तो अभी अभी प्रकट हुए हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रकट मधुना तद्वयम च ऐक्यम आप्तम। तो चैतन्य महाप्रभु जो अभी अभी प्रकट हुए हैं वो राधा रानी और कृष्ण के मिलित रूप हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके आए हैं, वो है स्वयं श्री कृष्ण। तो ऐसे पहचान करा के देते हैं कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु का। और कविराज गोस्वामी कहते हैं राधिका होय न कृष्ण हेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जाहार। राधा राधिका होय न कृष्ण हेर प्रणय विकार, तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लादिनी शक्ति की परिवर्तित रूप हैं, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जाहार, वो उनकी अंतरंगा शक्ति है और उनको लादिनी शक्ति कहते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, तो ये सच्चिदानंद मतलब सत चित और आनंद, तो इस सत के संबंध में है संधिनी शक्ति, चित के संबंध में है संवित शक्ति, आनंद के संबंध में है लादिनी शक्ति। इस तरह से दार्शनिक रूप से हमें समझना चाहिए। उधर भगवान के धाम में जो भी कुछ है ये भगवान की स्वरूप शक्ति का बना हुआ है, आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति का बना हुआ है, भौतिक तत्व वहां बिल्कुल नहीं है। तो संधिनी संवित और लादिनी शक्ति का संक्षेप में वर्णन तो हम कर ही चुके हैं। अब कविराज गोस्वामी कहते हैं लादिन, ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय में है, 68वां श्लोक है। लादिनी रसार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठ नाम महाभाव। तो ये जो लादिनी शक्ति है जिसके द्वारा श्री कृष्ण को आनंद प्राप्त होती है और जिससे भक्तों का पोषण होता है, वो लादिनी शक्ति का जो सार है उसे प्रेम कहते हैं, प्रेम सार भाव। और ये जो प्रेम का सार है इसको भाव कहते हैं। भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव, ये जो भाव की परम पराकाष्ठा है उसकी सबसे सर्वोच्च सीमा है, शिखर है, उसे महाभाव कहते हैं। तो लादनी प्रेम भाव महाभाव महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो महाभाव की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो महाभाव की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। तो वो महाभाव को जब व्यक्तित्व दिया जाता है, रूप दिया जाता है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो अब हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। सर्व गुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो सर्व गुणों के भंडार हैं श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की कांता हैं, कांताओं में से शिरोमणि है। माधुरी रस में श्री कृष्ण की सेवा करने में अनेक कृष्ण की कांताएं हैं, जैसे हमने वर्णन कर चुके हैं। वृंदावन में भी लाखों लाखों गोपियां हैं जो कांताएं कहलाती हैं। तो ये अनेक प्रकार की कांताओं में से श्रीमती राधा रानी शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ कांता है। कविराज गोस्वामी आगे भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं में अनेक कांताएं हैं, जैसे कि वैकुंठ में अनेक लक्ष्मियां हैं जो भगवान नारायण के साथ में रहती हैं, और द्वारका में अनेक महिषियां हैं या रानियां हैं जो श्री कृष्ण के साथ में रहती हैं, और वृंदावन में अनेक गोपियां हैं जो श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो तीनों प्रकार के जो कांताएं हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और गोपियां, इनके उद्गम श्रीमती राधा रानी है। जैसे जितने भी भगवान के अन्य रूप हैं, चाहे वो चतुर्व्यूह रूप हो, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, विष्णु, राम, नरसिंह, वामन, मत्स्य इत्यादि, ये सब भगवान श्री कृष्ण से ही अंततः उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। तो उसी तरह से भगवान के विभिन्न रूपों में जो उनके संगी रहते हैं, उनके जो कांते कांताएं रहती हैं, वो भी श्रीमती राधा रानी के विस्तार होते हैं। तो इनको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चाहे वो लक्ष्मियां हो वैकुंठ की, चाहे वो रानियां हो द्वारका की, या चाहे वो गोपियां हो वृंदावन की, तो इन सब के उद्गम श्रीमती राधा रानी है। इसलिए यहां कहा गया कांता शिरोमणि, समस्त कांताओं में से श्रीमती राधा रानी शिरोमणि है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी तो कहते ही हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन गोविंद को नमन करता हूं जो अपने धाम गोलोक में निवास करते हुए श्रीमती राधा रानी अर्थात अपने अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति के जो स्वरूप होते हैं, से बने हुए जो रूप होते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनके साथ में दिव्य रस और प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं। ऐसे श्री गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूं। तो यह है श्रीमती राधा रानी का स्थान। वैसे जो गोपियां हैं वृंदावन में, अधिकतर तो वो श्रीमती राधा रानी के काया व्यूह हैं, अर्थात उनके दिव्य शरीर से ही उत्पन्न होती हैं, उनके विस्तार हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी अपने आप को विस्तारित करती हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए। अब क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक ही काम है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण की सेवा करना, इसलिए उनका नाम है राधा। राधा शब्द आता है आराधना शब्द से, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कल्पना, उनके विचार ऐसे ही होते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की सेवा की जाए, कैसे उनकी आराधना की जाए, इसलिए उनका नाम है राधा, आराधना शब्द से। वैसे श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया गया है, केवल एक संकेत है। और ये इसलिए है कि
सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमती राधा रानी के परम भक्त हैं, छोटे होने के कारण उनके बहुत निकट रहते हैं, हमेशा श्रीमती राधा रानी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तो राधा भाव में है ही, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि श्रीमद भागवत ग्रंथ का उद्देश्य ही है श्रीमती राधा रानी के महात्म्य को प्रकाशित करना। तो यदि ये रूप से ऐसे क्यों कहा गया है, प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया गया यहां पर, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पार्षद होने के कारण इतना प्रेम है श्रीमती राधा रानी के प्रति कि यदि श्रीमती राधा रानी का नाम का उच्चारण एक बार भी करते तो भाव विभोर होकर गिर पड़ते, बेहोश हो जाते। अब ऐसे बेहोश अवस्था में वो कैसे भागवत कह सकते थे। अब परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन बचे थे, उन 7 दिनों में उनको सारा श्रीमद् भागवत सुनाना था, वैसे भी बहुत मुश्किल है 7 दिनों में सारा भागवत सुनाना। इसलिए परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत संक्षिप्त रूप में सुनाना पड़ा, और वो 7 दिन बचे हैं उनमें से सुखदेव गोस्वामी को व्रजलीला तक पहुंचाना था राजा परीक्षित को। वो पहले से ही चाहते थे कि पहले दिन से 7वें दिन तक वो व्रजलीला ही सुनाए, लेकिन वो जानते थे कि परीक्षित महाराज के साथ साथ बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे जो व्रज भाव को ठीक से समझ नहीं पा सकते थे, जो व्रज भाव नहीं होने के कारण शायद गलत फहमियां हो सकती थी उनके अंदर, उनके मन में। साथ साथ में आने वाली जो पीढ़ियां हैं और संसार के जन लोग, साधारण लोग हैं, वो भी उनको गलत समझेंगे। इसलिए व्रज लीला के लिए उनको एक बुनियाद बनानी थी, आधार बनाना था, एक आधार स्तंभ ये पहले 9 स्कंध हैं। इसमें सुखदेव गोस्वामी ने तैयारी की है दशम स्कंद की, और विशेष करके व्रजलीला की, और व्रजलीला में श्रीमती राधा रानी के लिए। इसलिए सीधे उन्होंने व्रजलीला में प्रवेश नहीं किया और राधा रानी का नाम भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया। तो उनको सचेत रहना था ताकि वो श्रीमद् भागवत की कथा पूरी तरह से 7 दिन पूरे 7 दिन कर सके और परीक्षित महाराज का जीवन धन्य हो जाए। फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में तो किया है, और ये श्लोक यहां है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें श्रीमती राधा रानी का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 30वां अध्याय है ये, गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज, श्लोक संख्या 28। तो इस श्लोक का पाठ अभी हम करते हैं। अनयाराधितो नूनम् भगवान हरेरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः अनयाराधितो नूनम् भगवान हरेरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः गोविन्दः। विसर्ग का भी उच्चारण ठीक से कीजिए, ठीक है। अनयाराधितो नूनम् भगवान हरेरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः अनयाराधितो नूनम् भगवान हरेरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः अनयाराधितो नूनम् भगवान् हरेरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः माताजी अनयाराधितो नूनम् भगवान् हरेरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः अनया उसके द्वारा आराधितः भली भांति पूजित नूनम निश्चय ही भगवान भगवान हरि ही कृष्ण ईश्वरः परम नियंता यत इतना कि न नह हमको विहाय त्याग कर गोविंदः भगवान गोविंद प्रीतः प्रसन्न याम जिसको अनयत ले गए रहः एकांत स्थान में अनुवाद इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। इस तीसरे स्कंद का शीर्षक है गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला में आए थे तो अचानक वो वहां से निकल गए, अदृश्य हो गए। तो ऐसे क्यों हुए? उन्होंने देखा कि थोड़ी गोपियों के हृदय में थोड़ा घमंड हो गया था कि देखो हम कृष्ण के साथ में हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं और हम देखो हमारा सौभाग्य हुआ, अन्यों को नहीं मिला ये सौभाग्य, मुझे मिला है, मैं कृष्ण के साथ में हूं। तो कृष्ण को थोड़ा भी घमंड अच्छा नहीं लगता है, कण लेश मात्र भी हो किसी के हृदय में तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो वहां से निकल गए। निकलने का उद्देश्य था कि फिर गोपियां बहुत पछताएंगी, शोक ग्रस्त होकर अपने पछतावे में वो जो भी घमंड अणुमात्र लेश मात्र जो घमंड बचा है बचा था उनके हृदय में वो भी नष्ट हो जाता जाएगा, ये उद्देश्य था उनका। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से निकल गए, तो गोपियां बहुत दुखी हो गई, श्री कृष्ण को ढूंढने लगी इधर उधर, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा मिट्टी में, और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गुणगान करते हुए उन चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलते रहे, और फिर अचानक उन्होंने श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों को देखा साथ में। जैसे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह चरणों में चिन्ह होते हैं तरह तरह के, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी के चरणों के तलवों में भी चिन्ह होते हैं, 19 होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो गोपियां तुरंत पहचान गए कि अरे श्रीमती राधा रानी यहाँ कृष्ण के साथ है। फिर उन्होंने ये श्लोक कहा, अनय उसके द्वारा, तो उस गोपी के द्वारा, उसका नाम नहीं लिया, सुखदेव गोस्वामी ने नाम नहीं लिया, कारण तो बताया था हमने, फिर बेहोश होकर गिर पड़ते बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होता उधर, तो इसलिए अनय उसके द्वारा आराधित है। तो गोविंद जो है उसके द्वारा बहुत अच्छी तरह से आराधित या पूजित हुए होंगे। भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद, तो अवश्य गोविंद इनके द्वारा और अच्छी तरह से पूजित हो गए होंगे, इसलिए उस गोपी का संग प्राप्त करने के लिए हम सबको त्याग कर चले गए श्री कृष्ण। तो आराधित अर्थात जिनके द्वारा श्री कृष्ण आराधित हैं, तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के द्वारा आराधित है। ये श्रीमती राधा रानी की सबसे बल्कि एकमात्र इच्छा है, और श्री कृष्ण की भी यही इच्छा होती है कि अपने भक्तों को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो इसलिए आराधित शब्द इसमें राधा रानी का नाम आता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इससे हम जान सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में अवश्य आता है, परंतु थोड़ा एक गोपनीय ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है सुखदेव गोस्वामी ने। इस श्लोक से यह भी सिद्ध होता है कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्री कृष्ण की। भले श्री कृष्ण के पास लाखों लाखों गोपियां भी हों, परंतु श्रीमती राधा रानी यदि नहीं हो तो फिर उनको लाखों लाखों गोपियों का संग भी अच्छा नहीं लगता। तो हम यहां इसका प्रमाण यह है कि वो फिर चले गए वहां से, और श्रीमती राधा रानी वहां पर आए, और श्रीमती राधा रानी का भाव श्री कृष्ण के लिए श्रेष्ठ कितना है और कैसा है, इसके लिए भी एक छोटी सी लीला है इसी संबंध में, कि जब रासलीला छोड़ के श्री कृष्ण चले गए और गोपियां ढूंढती रहीं श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण देखा कि अब गोपियां बहुत निकट पहुंच गई हैं, अब कैसे छुपूं, मैं कहां छुपूं, अब तो कोई छुपने का स्थान नहीं है, तो ठीक है मैं ऐसे करता हूं, मैं चतुर्भुज नारायण का स्वरूप धारण कर लेता हूं। तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने ऐश्वर्य भाव में श्री कृष्ण खड़े हो गए नारायण स्वरूप धारण करके। तो गोपियां आई, अचानक गोपियों ने नारायण को देखा, अरे नारायण भगवान यहां पे हैं। तो वैसे तो जो वैकुंठ भाव में भक्त होते हैं वो तो वहीं रुक जाते, सो तो यही तो कृष्ण है तो चलो यहीं इनकी उपासना करते हैं, परंतु गोपियों ने नमस्कार तो किया, कहा अरे भगवान नारायण नमस्कार आपको, आपके चरणों में प्रणाम। परंतु वहां नारायण की पूजा करने के बजाय उन पूछा उनको, अच्छा पहली बात चलो प्रणाम कर लिया हमने, अभी बताइए कृष्ण कहाँ गए, पर देखा है क्या आपने, उनको मतलब कृष्ण से था नारायण से नहीं था, हालांकि कृष्ण नारायण एक ही है, फिर भी अलग भाव में अपने आप को जब कृष्ण प्रकट करते हैं तो वो नारायण कहलाते हैं। तो गोपियों को भगवान के नारायण स्वरूप में इतनी रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी,
उनको श्री कृष्ण वृंदावन के गोविंद श्याम सुंदर चाहिए थे, बांसुरी बजाने वाले, गावों को चराने वाले। ये ऐश्वर्यशाली चतुर्भुज रूप में उनको कुछ आनंद नहीं मिल रहा था, तो शायद भगवान ने अपने चार भुजाओं से ऐसे इशारा किया होगा शायद कि कृष्ण उधर गए होंगे। वो गए वहां, नारायण को छोड़कर चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में खड़े रहे, लेकिन उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी आई। अब जब श्रीमती राधा रानी आई तो भगवान श्री कृष्ण पर चतुर्भुज रूप को धारण करके रखना नहीं कर पाए धारण। उनके जो दो अधिक हाथ थे वो पिघल गए और दो भुजाओं में खड़े रह गए, ऐसे खड़े हो गए। कृष्ण दिखाना चाहते थे अपना नारायण स्वरूप, लेकिन हो गए कृष्ण फिर से। तो अब खुलासा हो गया, पोल खुल गया। अभी राधा रानी के सामने कृष्ण अपने आप को बचा के नहीं रख सकते, छुपा के नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है कि अन्य गोपियों की तुलना में श्रीमती राधा रानी की भक्ति, उनका प्रेम श्रेष्ठ है। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो संबंध है, जिसके बारे में गलत फहमियां, गलत धारणाएं संसार में लोगों को हैं, उसको ठीक से समझने के लिए एक उपमा हम दे सकते हैं, एक दृष्टांत। जरा ध्यान से उसको सुनिए, इस दृष्टांत को, ठीक है। विचार कीजिए कि एक नाटक हो रहा है। अब उस नाटक में भाग ले रहे हैं कोई भक्त, कोई व्यक्ति, भक्त हो ना हो, जो भी हो, और वो पति पत्नी हैं, वो उस नाटक में भूमिका निभा रहे हैं। है वो असली जीवन में पति पत्नी, परंतु उस नाटक में पति पत्नी नहीं है, वो है प्रेमी और प्रेमिका। और ये जो महिला है, जो पत्नी है, उस नाटक में उनके कोई पति है, ठीक है, अब तक ठीक है। और नाटक में वो अपने पति के साथ भी बैठना पसंद नहीं करती है। मतलब जो अपने नाटक के पति है उसके साथ बैठना पसंद नहीं करती, और कोई संबंध नहीं होता वैसे, केवल नाम के लिए पति पत्नी है, परंतु ज्यादा समय वो अपने प्रेमी के साथ बिताती है, जो अपने असली जीवन में पति है, ठीक है। तो अभी नाटक में पति पत्नी, अभी जब वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे से आपस में एकांत स्थान में बात करते हैं, तो हो सकता है कोई निंदा करे, अरे देखो देखो ये तो किसी और की पत्नी है, देखो एक पुरुष से बात कर रही, कैसे ये कर रही हो। लेकिन वास्तव में ये केवल नाटक की बात है ना, असली में, असली जीवन में वो कौन है, कौन है वो, दो पति पत्नी ही है ना। तो एक दूसरे में बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, केवल नाटक में है कि वो महिला जो है उसकी उसका विवाह किसी दूसरे स्त्री के साथ हुआ, पुरुष के साथ हुआ है, और वो भी वो साथ में रहते भी नहीं है, केवल नाम के लिए है, श्रीमती ये जो भी है नाम उनका। ठीक उसी तरह से वो जो मूल पति पत्नी है वो कौन है, राधा कृष्ण, और भगवान की लीला होती है वो नाटक। तो श्रीमती राधा रानी आती है, वो किसी और की पत्नी बनती है, किनकी, अभिमन्यु की, लेकिन पति पत्नी का संबंध नहीं होता नाटक में भी नहीं होता। संबंध केवल इतना है कि वो एक घर में रहती हैं, और उस घर में रहते हुए वो अपने पति के साथ ऐसे बाह्य दृष्टि से लगता है कि पति पत्नी है, लेकिन वास्तव में संबंध कोई नहीं है। और फिर वो जाके अलग से कृष्ण से मिलती हैं। तो यह है परकीय भाव। तो उस प्रेम को और भी मधुर बनाने के लिए ये ऐसी लीला होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। ये दृष्टांत आप समझ गए, स्पष्ट है, बहुत सरल है। इसलिए कोई आप जब बात कर रहे होते हैं तो कोई आपको कोई ऐसी बातें कहता है कृष्ण के बारे में, गोपियों के बारे में, तो आप ये दृष्टांत उनको सुना सकते हैं, ये उपमा सुना सकते हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से वो समझ सकते हैं कि वास्तव में राधा रानी और कृष्ण का संबंध क्या है। वो नित्य संगी है। और दूसरी बात कि हाँ, व्रज में भी वास्तव में भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कराया था, तो वैसे भी देखा जाए तो असली वो पति पत्नी है। फिर भी वहां जो कृष्ण की लीला है वो एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान अपने लीलाओं के रस को और भी तीव्र और गाढ़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए ये स्वकीय और परकीय में भेद थोड़ा करते हैं, ताकि उनका जो गोपियों के साथ में जो संबंध हो और थोड़ा मीठा बन जाए। और जो अभिमन्यु आदि हैं जो गोपियों के तथा कथित पति बन जाते हैं, तथा कथित ही हैं, वो सच्चे नहीं है, केवल ऐसे नाटक है, वो अपने घर में रहते हैं और उनके भी सास ससुर ये वो सारा सब कुछ होता है। तो ऐसे ब्रज में लीलाएं होती हैं अंततः परे के रस के भाव को बढ़ाने के लिए, और अंततः श्रीमती राधा रानी का जो श्री कृष्ण के साथ संबंध है उसको बढ़ाने के लिए। तो ब्रज में जो भी कुछ होता है वो केवल राधा कृष्ण की लीला को पोषित करने के लिए और रसमय बनाने के लिए होता है, बस यही उद्देश्य होता है। इसलिए राधा रानी और श्री कृष्ण के संबंध में हमें कोई भौतिक आरोप नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हम सब के लिए सबसे ये पूजनीय एक संबंध है। अन्यथा बड़े बड़े जो संत हुए हैं, जो स्वयं सन्यासी गण हुए, वो इस संबंध को पूछते क्यों? स्वयं चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, इतने बड़े बड़े सब संत रहे हैं, इनमें से कई बड़े बड़े सन्यासी भी रहे हैं, तो उन्होंने क्यों इस संबंध को का गुणगान इतना किया होगा? ऐसे महान संतों को साधारण पुरुष स्त्री के संबंध को का गुणगान करने से क्या मतलब है, जब ऐसे इतने सारे बड़े बड़े महाजन जो भक्त सन्यासी आदि गुणगान करते हैं, तो इसका मतलब है कि यह संबंध भौतिक नहीं है, बल्कि भगवान की लीलाओं की पराकाष्ठा है ये। और जब हम इसको समझ लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो श्रीमती राधा रानी का विषय तो बहुत ऊंचा विषय है, और यही इतनी ही बस चर्चा करना यहाँ काफी है। आज शाम को भी श्रीमती राधा रानी के बारे में थोड़ी कुछ चर्चा करेंगे, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ इत्यादि। और अब और एक हम भजन गाएंगे जो ब्रज में गाते हैं। इसके शब्द जो हैं अभी जो दिखाई देंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, वो तो केवल अंग्रेजी में है क्योंकि देवनागरी में नहीं मिले वो, फिर भी आपने ये भजन तो सुना है कई बार। हरि व्यास देवाचार्य द्वारा विरचित जय राधे जय राधे राधे ये भजन है। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय
श्याम गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रसिलो छल छबिलो गुण गर्विलो श्री कृष्ण रस विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उर धारिणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगे श्याम सुवंगे श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण प्राण प्रियारे रूप उज्यारे अति सुकुमारे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे मन मनोहर महामोदाकर सुंदर वरतर श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण शोभासनी मोहमयिनी कोकलवेणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे कीरतिवंता कामिनी कांता श्री भगवंता श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण Thank you. चंदावदने कुंदारदने शोभा सदने श्रीराधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुमार श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण हंसगवनी राजती रवणी क्रीड़ा कवणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण कंचन रेले रति रस रेले अति अलबेले श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण रवणी रम्य तरतरतम्य गुण अगम्य श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण Krishna Krishna Jai Krishna Jai Shri Krishna Shaktyahladini Ati Priyavadini Ura Unmadini Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Anga Anga Tona Sarasa Salona Subhaga Sutona Shri Krishna Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai Shri Krishna Radha Namini Guna Abhiramini Hari Priya Swamini Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Hare Hare Hari Hare Hare Hari Hare Hare Hari Shri Krishna Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai Shri Krishna Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai Shri Krishna Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai Shri Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्रीमती राधा रानी की जय श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे
हर रोज हम श्री राधिका राधिकाष्टक गाते हैं तो आज वो भी गाएंगे नीचे बैठ के गाएंगे